नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, यूजर फ्रेंडली। क्लिफ क्वांग द्वारा रॉबर्ट फेब्रिकन के सहयोग से लिखी गई डिजाइन इतिहास, प्रौद्योगिकी और सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित गैर कथा पुस्तक है। इसका मुख्य विषय वह व्यापक धारणा है कि मशीनों और सेवाओं को मनुष्य की जरूरतें पहले से समझकर काम करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि आज सहज लगने वाले बटन, स्क्रीन, संकेत, स्वचालन और व्यक्तिगत सुझाव किसी प्राकृतिक प्रगति का परिणाम नहीं है। इनके पीछे उपयोगकर्ता अनुभव, डिजाइन का लंबा इतिहास, औद्योगिक बदलाव और मानवीय भूलों को समझने की कोशिश रही है। पुस्तक 20वीं सदी के आरंभिक औद्योगिक युग से लेकर युद्धकालीन प्रणालियों, कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन युग तक इस विचार के विकास को जोड़ती है। इसका उद्देश्य केवल अच्छे उत्पादों की प्रशंसा करना नहीं है, यह दिखाती है कि सुविधा, सुरक्षा और पहुंच बढ़ाने वाला डिजाइन कभी कभी उपयोगकर्ता की समझ, कौशल और नियंत्रण भी घटा सकता है। इसलिए यह पुस्तक पाठक को रोजमर्रा की तकनीक के अदृश्य नियमों को पहचानने और उनके प्रभावों पर आलोचनात्मक ढंग से विचार करने का आधार देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, उपयोगकर्ता अनुकूलता एक ऐतिहासिक विचार है, स्थायी नियम नहीं। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि उपयोगकर्ता अनुकूलता का अर्थ केवल किसी वस्तु को सरल बनाना नहीं है। यह एक ऐतिहासिक रूप से निर्मित आदर्श है जो बदलती तकनीक, श्रम व्यवस्था, सुरक्षा की जरूरतों और उपभोक्ता अपेक्षाओं के साथ विकसित हुआ। आरंभिक मशीनों में अक्सर यह मान लिया जाता था कि मनुष्य को मशीन की कठोर कार्यप्रणाली सीखनी होगी। बाद में डिजाइनरों और इंजीनियरों ने उल्टा प्रश्न उठाया, मशीन को मनुष्य की सीमाओं, आदतों और अपेक्षाओं के अनुरूप कैसे बनाया जाए। यह परिवर्तन विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हुआ जब जटिल प्रणालियों का उपयोग प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बाहर आम लोगों तक फैलने लगा। क्वांग और फैब्रिकेंट इस इतिहास के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि सहजता भी डिजाइन का निर्णय है। किसी उपकरण का आकार, नियंत्रणों की स्थिति, भाषा, क्रम और दृश्य संकेत उपयोगकर्ता को बताते हैं कि क्या संभव है और क्या सामान्य माना जाएगा। इसलिए उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन तटस्थ नहीं होता, वह व्यवहार को दिशा देता है, कुछ कार्यों को आसान बनाता है और कुछ विकल्पों को कम दिखाई देने वाला बना सकता है। पुस्तक इसीलिए डिजाइन को सजावट या अंतिम चरण की पैकेजिंग नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में रखती है। दूसरा, फीडबैक जटिल प्रणालियों में समझ और सुरक्षा का आधार बनता है। लेखक फीडबैक को उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन का मूल सिद्धांत मानते हैं। फीडबैक का अर्थ है कि किसी क्रिया के बाद प्रणाली उपयोगकर्ता को ऐसा स्पष्ट संकेत दे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या करना चाहिए। यह संकेत दृश्य, ध्वनि, स्पर्श या किसी स्थिति संदेश के रूप में हो सकता है। इसके बिना व्यक्ति को अनुमान लगाना पड़ता है और जटिल परिस्थिति में अनुमान त्रुटि तथा तनाव बढ़ाता है। पुस्तक के ऐतिहासिक संदर्भ, विशेषकर औद्योगिक नियंत्रण और विमानन जैसी उच्च जोखिम वाली प्रणालियां दिखाते हैं कि दुर्घटनाओं को केवल मानवीय अक्षमता कह देना पर्याप्त नहीं है। कई बार नियंत्रणों का अस्पष्ट विन्यास, सूचना की अधिकता या महत्वपूर्ण चेतावनी का गलत ढंग से प्रस्तुत होना गलती को संभव बनाता है। इस दृष्टि से अच्छा डिजाइन मनुष्य को दोष देने के बजाय व्यवस्था और व्यक्ति के बीच के संपर्क को जांचता है। फीडबैक उपयोगकर्ता को यह भी बताता है कि उसके पास नियंत्रण है या नहीं। यदि स्वचालित प्रणाली अपना निर्णय बिना समझाए बदलती रहे तो सुविधा के बावजूद भरोसा कमजोर हो सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष है कि सरलता का अर्थ जानकारी छिपाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी देकर कार्रवाई और परिणाम का संबंध समझने योग्य बनाना है। तीसरा, नवीनता और परिचित संकेतों के बीच संतुलन अपनाने को संभव बनाता है। नई तकनीक के सामने डिजाइन की एक कठिन समस्या होती है। उत्पाद इतना नया हो कि वह नई क्षमता दे, लेकिन इतना परिचित ना हो कि लोग उसे समझ ही ना सके। यूजर फ्रेंडली इस तनाव को डिजाइन इतिहास के महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में देखती है। उपयोगकर्ता अपने पुराने अनुभवों के सहारे नई चीजों का अर्थ निकालते हैं, इसलिए नियंत्रण, रूपक और व्यवहार में परिचित संकेत सीखने की लागत घटा सकते हैं। लेकिन केवल पुराने रूपों की नकल करना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नई प्रणाली की वास्तविक क्षमता और सीमाएं अलग हो सकती हैं। यहां डिजाइनर को परिचय का उपयोग पुल की तरह करना पड़ता है, भ्रामक आवरण की तरह नहीं। पुस्तक के अनुसार अच्छे इंटरफेस उपयोगकर्ता को आरंभिक भरोसा देते हैं, फिर धीरे धीरे उनके सामने अधिक जटिल विकल्प खोलते हैं। खराब इंटरफेस या तो उपयोगकर्ता को अनावश्यक नियमों से भर देते हैं या अत्यधिक सरलीकरण करके वास्तविक प्रक्रिया को रहस्यमय बना देते हैं। यह विचार डिजिटल उत्पादों से आगे भी लागू होता है। रोजमर्रा के उपकरण, सेवाएं और सार्वजनिक प्रणालियां सभी संकेतों के माध्यम से लोगों को सिखाती है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है। अतः उपयोगिता केवल दक्षता का प्रश्न नहीं, सीखने की प्रक्रिया, अपेक्षा और मानसिक मॉडल का प्रश्न भी है। चौथा, यूजर फ्रेंडली विरोधाभास सुविधा के साथ निर्भरता और अपारदर्शिता भी ला सकता है। पुस्तक का सबसे आलोचनात्मक विचार यूजर फ्रेंडली विरोधाभास है। जब कोई प्रणाली अत्यंत सहज बनती है तो वह अधिक लोगों के लिए सुलभ हो सकती है। यह लाभ वास्तविक है क्योंकि जटिल विशेषज्ञता के बिना भी लोग संचार, सूचना, लेन देन और रचनात्मक कार्य कर पाते हैं, लेकिन उसी सहजता की कीमत भी हो सकती है। यदि तकनीक हर निर्णय को पर्दे के पीछे लेने लगे तो उपयोगकर्ता यह समझना बंद कर सकता है कि प्रणाली कैसे काम कर रही है, किस आधार पर सुझाव दे रही है और उसे बदलने का अधिकार किस हद तक है। लेखक इसे केवल तकनीकी कमी नहीं, नियंत्रण के प्रश्न के रूप में रखते हैं। व्यक्ति को सुविधाजनक अनुभव मिल सकता है, फिर भी वह अपनी पसंदों, ध्यान और व्यवहार को प्रभावित करने वाले नियमों से अनजान रह सकता है। निजीकरण और आकर्षक डिजिटल अनुभव इस समस्या को तीखा बनाते हैं, क्योंकि वे उपयोगकर्ता को वही दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उसे तुरंत पसंद आए। इससे विकल्पों का दायरा और आत्म आलोचना दोनों सीमित हो सकते हैं। पुस्तक आसान उपयोग के विरुद्ध नहीं है, उसका आग्रह यह है कि डिजाइन में पारदर्शिता, विकल्प और निर्णायक क्षणों पर मानवीय भागीदारी बनी रहनी चाहिए ताकि सुविधा उपयोगकर्ता की क्षमता को विस्थापित न करे। अंत में, डिजाइन रोजमर्रा के व्यवहार, बाजार और मानवीय संबंधों की संरचना करता है। यूजर फ्रेंडली डिजाइन को स्क्रीन, ऐप या उत्पाद की सतह तक सीमित नहीं करती। पुस्तक दिखाती है कि डिजाइन के नियम इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग काम कैसे करते हैं, खरीदारी कैसे करते हैं, मित्रता और संवाद को कैसे व्यवस्थित करते हैं तथा संस्थाओं के साथ कैसे संपर्क करते हैं। जब कोई सेवा उपयोगकर्ता की ओर से विकल्प छांटती है, अगले कदम सुझाती है या प्रक्रिया को अपने आप पूरा करती है, तब वो केवल समय नहीं बचाती, वह प्राथमिकताओं और व्यवहार की एक संरचना भी बनाती है। इसीलिए लेखक डिजाइनरों की भूमिका को केवल समस्या हल करने वाले पेशेवरों की भूमिका से बड़ा मानते हैं। उनकी पसंद यह तय कर सकती है कि कौन शामिल होगा, किसे अतिरिक्त बाधा मिलेगी और किस प्रकार का आचरण सामान्य या लाभदायक दिखाई देगा। पुस्तक विशेष रूप से उस बदलाव की ओर संकेत करती है जिसमें उत्पादों का केंद्र वस्तु से हटकर अनुभव, संकेत और क्रमबद्ध व्यवहार की ओर जाता है। भविष्य की तकनीक जितनी अधिक सक्षम होगी, उतना ही जरूरी होगा कि वह सामाजिक संकेतों और मानवीय गरिमा के प्रति संवेदनशील हो। पाठक के लिए इसका अर्थ है कि वह किसी अनुभव को केवल सुविधाजनक कहकर स्वीकार न करे, बल्कि यह भी पूछे कि उसके नियम किसके हित में बने हैं और वे उसके विकल्पों को कैसे आकार दे रहे हैं। निष्कर्ष में, यूजर फ्रेंडली उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजाइन, प्रौद्योगिकी, उत्पाद निर्माण, डिजिटल नीति या मीडिया के प्रभाव को समझना चाहते हैं। डिजाइन पेशेवरों को इसमें अपने क्षेत्र का विस्तृत ऐतिहासिक और नैतिक संदर्भ मिलता है, जबकि गैर विशेषज्ञ पाठकों को रोजमर्रा के उपकरणों और सेवाओं को अधिक सजगता से पढ़ने की भाषा मिलती है। यह पुस्तक कोई चरणबद्ध डिजाइन मैनुअल नहीं है जो पाठक तुरंत लागू करने योग्य नियमों, वायरफ्रेम विधियों या अनुसंधान टेम्पलेटों की तलाश में है। उन्हें इसे उसी उद्देश्य से नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मूल्य उस बड़े प्रश्न में है कि सहज अनुभव किस तरह बनते हैं और वे समाज में क्या बदलते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता उपयोगकर्ता अनुभव की उत्पत्ति को अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं, मानवीय भूलों, औद्योगिक प्रणालियों और डिजिटल उपभोक्ता संस्कृति से जोड़ने में है। यह अच्छे डिजाइन को केवल सुंदर, तेज या आसान होने के आधार पर नहीं आंकती, इसके बजाय यह सुरक्षा, समझ, स्वायत्तता और शक्ति के बीच संबंधों की जांच करती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक फीडबैक, नियंत्रण, पारदर्शिता और डिफॉल्ट विकल्पों जैसे तत्वों पर ध्यान देना शुरू कर सकता है। बौद्धिक लाभ यह है कि वह सुविधा को निष्पक्ष गुण मानने के बजाय एक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय के रूप में देखना सीखता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्लिफ क्वांग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।